नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से 8 शिक्षाएं, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। और इसमें जो सबसे पहली शिक्षा भगवान ने गोवर्धन लीला की, देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु, और इसके द्वारा भगवान ने अन्य देवताओं के समक्ष भी ये सिद्धांत स्थापित किया कि किस चेतना में उन्हें इस सृष्टि को चलाना है। और हालांकि सभी भगवान के भक्त हैं, परंतु अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग श्रेणियों में, क्षमताओं में वो भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। और क्योंकि सभी एक प्रकार से साधक हैं, जब तक कि कोई आध्यात्मिक संसार नहीं पहुंच जाता तब तक हम सभी साधक हैं। चाहे कोई कलयुग में साधना भक्ति कर रहा हो, चाहे कोई सत्युग में कर रहा हो, या चाहे कोई देवराज इंद्र जैसे बड़े देवता इंद्रलोक में क्यों ना कर रहे हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान इस गोवर्धन लीला के द्वारा सिखाना चाहते थे कि किस भावना में हमें भगवान की सृष्टि में रहना है, भगवान की सृष्टि को चलाना है यदि वो उत्तरदायित्व दिया गया है। और भगवत धाम पहुंचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है नम्रता। तो ये सबसे प्रथम शिक्षा जिसके अंदर हम इस मुद्दे पर कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं कि जो देवराज इंद्र नहीं कर पाए, ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पूजा में शामिल होना तो दूर, प्रसन्न होना तो दूर, बल्कि उस गोवर्धन पूजा को रोकने के लिए, और न केवल रोकने के लिए बल्कि सारे ब्रजवासियों को खत्म करने के लिए, पूरे ब्रजमंडल को विध्वंस करने के लिए देवराज इंद्र उतारू हो गए। तो हमने इस मुद्दे को लिया है कुछ हफ्तों से कि जब तक हमारे अंदर वो शरणागति का भाव नहीं आएगा, और किस प्रकार की शरणागति, वो शरणागति जो कि अहेतुकी है, वो शरणागति जो कि जोर जबरदस्ती से नहीं की जा रही, वो शरणागति जो हम स्वेच्छा से अपने सर्वस्व को भगवान को अर्पित करते हैं, और वो है प्रेममय शरणागति, लविंग सरेंडर। तो ये जो प्रेममय शरणागति है, इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे पिछले 2 सेटिंग से हम परिवर्तन, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और ये दो श्लोक हम लिए हैं इसी गोवर्धन लीला से, दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 24, श्लोक क्रमांक 32 एवं 33। इस अध्याय का शीर्षक, जैसे यहां पर आप पढ़ रहे हो, गोवर्धन पर्वत की पूजा। तथा च व्यदधु सर्वम् यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्रव्येण गिरिद्विजां उपरित्य बलिन् सम्यक् आद्रतायवसं गवा गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्रव्येण गिरिद्विजां उपरित्य बलिन् सम्यक् आद्रतायवसं गवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्रव्येण गिरिद्विजां उपरित्य बलिन् सम्यक् आद्रतायवसं गवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। तथा इस तरह च और व्यदधु संपन्न किया सर्वम हर बात यथा जिस तरह आह बतलाया मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने वाचयित्वा ब्राह्मणों से वाचन कराया स्वस्ति अयनम शुभ मंत्र तद द्रव्येण इंद्र यज्ञ के निमित्त एकत्र की गई सामग्री से गिरी पर्वत द्विजान तथा ब्राह्मणों को उपरित्य भेंट करके बलिन उपहार सम्यक सभी एक साथ आद्रता आदरपूर्वक यवसम घास गवाम गौवों को गोधनानी सांडों गौवों तथा बछड़ों को पुरस्कृत्य आगे करके गिरिम पर्वत की चक्रहु की प्रदक्षिणम प्रदक्षिणा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपभोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तात्पर्य, वृंदावन वासी एकमात्र भगवान कृष्ण के भक्त थे, यही उनके जीवन का सार समाहार था। भगवान के नित्य संगी होने के कारण न तो उन्हें इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से कोई सरोकार था, न ही वे कृष्ण द्वारा कहे गए यांत्रिक सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। वे तो कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा ही किया। उनकी यह सरल प्रेम मानसिकता कोई संकीर्ण हृदयता या अज्ञान न थी, क्योंकि वे परम पूर्ण सत्य के प्रति अनुरक्त थे जो अपने में सारा ब्रह्मांड समाये हुए है। इस तरह वृंदावन वासियों ने निरंतर सभी सत्यों के आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य अर्थात स्वयं श्री कृष्ण का अनुभव किया, जो समस्त कारणों के कारण तथा इस जगत का पालन करने वाले हैं। वृंदावन वासी उन परम ब्रह्म की प्रेमा भक्ति से अभिभूत रहते थे, अतएव वे समस्त प्राणियों में परम भाग्यशाली परम बुद्धिमान तथा परम व्यावहारिक थे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए। हरे कृष्णा।
तो पिछले हफ्ते हमने वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णवता का अर्थ क्या है, इसके विषय में कुछ चर्चा की थी। एक है बाहरी रूप से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि बनते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु वास्तविक वैष्णवता जब तक कि हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं आता, और वो है वैष्णव के गुण और कितने गुण होने चाहिए वैष्णव के अंदर, या जैसे यहां पर इस चित्र में दिख रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर की सीनियोरिटी के लिए उसको कितने मेडल मिलने चाहिए। तो यहां पर हमने उदाहरण लिया था कि एक तो वर्दी है, किसी आर्मी ऑफिसर की वर्दी है, और उस वर्दी के ऊपर जो उपलब्धियां उसने प्राप्त की है वो एक एक कर कर लगती जाती है। तो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये सबसे पहली कृपा भगवान की आत्मा के ऊपर कि उसे मनुष्य शरीर दिया। तो ये मनुष्य शरीर है क्या? ये वर्दी आत्मा के ऊपर, अब ये वर्दी है। मनुष्य शरीर देने का अर्थ है कि भगवान अब उस आत्मा को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते हैं। तो मनुष्य शरीर मिलना अर्थात भगवान की आर्मी में भर्ती। परंतु बोलते हैं ना, आर्मी में एक कहावत है, आज भर्ती कल चक्रवर्ती। ऐसा नहीं होता है, आज भर्ती और कल चक्रवर्ती नहीं बन सकता। उसे अपने आप को सिद्ध करना होता है कि क्या वो योग्य हैं ये सारी जो उपलब्धियां उसे प्राप्त होनी है, क्या वो उसके योग्य है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात जब हम वैष्णव बनने का प्रयास करते हैं, तो जो प्रभुपाद ने हमें ये विधि दी है 16 माला और 4 नियम, तो पहले 4 नियम है। 4 नियम हमें मनुष्य योनि में टिकाए रखते कि हम टिके रहें मनुष्य योनि में, ये है 4 नियम। और फिर जो जीवन शैली है 16 माला और फिर जो 64 अंग हमारे आचार्य हमें दिए हैं, तो ये जीवन शैली क्या है कि हम धीरे धीरे अब ये जो मेडल्स हैं, वैष्णवता के मेडल्स हैं, इन्हें प्राप्त करें। तो इस पर हमने चर्चा की थी कि ये चिन्ह हैं इस वर्दी के ऊपर, ये अलग अलग जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये चिन्ह दर्शाते हैं कि ये ऑफिसर कितना सीनियर बन चुका है। केवल इन मेडल्स और चिन्ह से पता लग जाता है कि इसकी सीनियोरिटी कितनी है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसका रियलाइजेशन कितना होना चाहिए। तो वैसे ही इस भक्त के समुदाय में, वैष्णव समुदाय में और इस्कॉन में यदि हम अपने आप को देखें, तो हम यदि अपने आप को सीनियर डिवोटी कहलाना चाहते हैं या मानते हैं, तो सीनियोरिटी किसको कहते हैं? उसके अंदर वो वैष्णव क्वालिटीज आ रहे हैं कि नहीं। केवल बहुत साल इस्कॉन में आवागमन करते रहना, केवल उसकी हम फिर से विस्तार में चर्चा करेंगे, मंदिर में आवागमन, और केवल एक इस्कॉन मंदिर में नहीं, बहुत से इस्कॉन मंदिर में हमारा आवागमन होता रहता है। तो हमको लगता है कि मैंने इतने इस्कॉन के मंदिर देख लिए इसलिए मैं सीनियर हूं। केवल एक नहीं, पूरे देश विदेश के इस्कॉन मंदिर मैंने देख लिए, भ्रमण करके उनके गेस्ट हाउस में भी रुका हूं 3-3 दिन। तो हमने चिन्हों के विषय में ये श्लोक लिया था कि स्वर्ग रिटर्न कौन है, ये चार चिन्ह इसमें बताए गए। स्वर्गच्छता नाम यह भूमि लोके चत्वारी चिन्हानी बसंती देहे दान प्रसंगो मधुरा चवाणी सुरार्चणम ब्राह्मण तर्पणम च। कि जिसके अंदर ये चार गुण हैं वो व्यक्ति नीति शास्त्र के अनुसार स्वर्ग रिटर्न्ड है। केवल लक्षणों से समझ में आ जाएगा कि वो कहां से आया है इस पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम बताएंगे, ऊपर है स्वर्ग नीचे है नरक। और अज्ञानवश लोग बोल देते हैं, कोई भी मरे उसको बोल देते हैं ऊपर गया, बहुत कम जाते हैं ऊपर, ज्यादातर यात्राएं नीचे ही हो रही हैं कलयुग में आजकल। तो ये चार लक्षण स्वर्ग रिटर्न के, जो बहुत दानवीर स्वाभाविक रूप से जिसके अंदर दान करने की प्रवृत्ति है, जिसकी वाणी बहुत मधुर है, जो अन्य देवताओं का आदर करता है और ब्राह्मणों का आदर करता है और विधि विधानों का पालन करता है, वो व्यक्ति है स्वर्ग रिटर्न। ये कुछ लक्षण हैं स्वर्ग रिटर्न व्यक्ति के। तो हमने चर्चा की थी, कोई अगर विदेश से रिटर्न होता है तो उसके लक्षण दिखते हैं, केवल बिस्लेरी पानी पिएगा अभी, यहां वहां नल का पानी नहीं पी सकता, केवल आने जाने में उसको गाड़ी चाहिए। तो वैसे ही अब चार चिन्ह हैं नरक रिटर्न जो हैं। नरकस्य चिन्हम नरकागतस्य विरोधिता बंधु जलेषु नित्यम सरोगता यह अतीव दोषा नित्य परायण कटुका चवाणी। ये चार चिन्ह उस व्यक्ति के जो अभी अभी हाल ही में नरक से आया है। अच्छा, इस श्लोक में यह बताया गया है कि न केवल ये चिन्ह ये दर्शाते हैं कि वो कहां से आया है, बल्कि उन लक्षणों को जितना वो पालता है यहां आने के बाद यदि वो छोड़ दे तो ठीक है, परंतु होता क्या है कि उन लक्षणों को जब वो पालता है तो इधर बताया गया है नरकागतस्य, वापस जाता है फिर वहीं। विरोधिता बंधु, सबसे पहला चिन्ह जो हर चीज के अंदर विरोध करे, हर चीज पर विरोध करे, कि यदि साक्षात भगवान भी उनके सामने आ जाए तो कहेंगे नहीं कोई नौटंकी है। तो विरोधिता, जैसे शिशुपाल इस श्रेणी में था कि बचपन से पैदा होते ही भगवान श्री कृष्ण का विरोधी, सबसे पहले शब्द उसके मुख से भगवान श्री कृष्ण के प्रति गालियां निकली। देखो क्या उसकी विकृति थी कि पैदा होते ही गाली गलौच। सरोगता, हर समय रोगग्रस्त, ये एक लक्षण है जो नरक से रिटर्न है, हर समय रोगग्रस्त। अतीव दोषा, और दोष दृष्टि रखने वाला, हर एक वस्तु में दोष देखने वाला, ये तीसरा लक्षण। और नित्यम परायण कटुका चवाणी, जिसकी वाणी में हर समय कटुता है, कर्कश वाणी बोलने वाला, ये हैं चार चिन्ह जो नर्क से रिटर्न है। अब हमें लगता होगा कि मैं तो भक्ति में आ गया तो मेरे अंदर तो अब कौन से चिन्ह दिखने चाहिए, गोलोक रिटर्न्ड। जैसे हाल ही में मुझे एक प्रश्न पूछा गया था कि भगवान तो गीता में कहे हैं कि वो सभी पापों से हमको मुक्त कर देते हैं, तो फिर हम साधना भक्ति में जो दुख भोगते हैं क्या वो भगवान द्वारा दिए जाते हैं या अब तक हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसका पंखा अब तक चल रहा है। तो हमने उत्तर में श्लोक लिया कौन सा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस श्लोक में भगवान ने दो दफा सर्व शब्द इस्तेमाल किया। भगवान ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उस शरणागत भक्त के सारे पापों को दूर कर देता हूं या उसको मुक्त कर देता हूं उसके सारे पाप कर्मों से, पिछले और प्रेजेंट और आने वाले जो भी। तो भगवान ने जो सर्व ये शब्द इस्तेमाल किया है, ये पहली लाइन नहीं है, पहली लाइन में भी सर्व शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसमें भगवान ने कहा है जो सर्वधर्मान होगा तो मैं सर्व पापे भय करूंगा। अब होता क्या है, हम सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी हमारे जो आसक्तियां हैं उसका परित्याग तो नहीं करना चाहते, थोड़ा अपने लिए बचाए रखना चाहते हैं इन केस काम आ जाए कभी आगे चलकर, तो हमारी आसक्तियों को हम कहीं ना कहीं छुपाए रखते हैं हमारे भौतिक जीवन के खंडरों में, और वहां जा जाकर उन कब्रस्तानों में जा जाकर उन आसक्तियों को निकालते हैं कभी कभी साधना भक्ति में भी। तो क्योंकि हमारी तरफ से सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं हो रहा इसलिए वहां से भी सर्व पापेभ्य नहीं हो रहा। तो इसलिए ये दो श्लोक हमने लिए स्वर्ग रिटर्न नर्क रिटर्न के, इसलिए ताकि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों लक्षण जो हैं वो शुद्ध भक्ति में एक बाधा है, और शुद्ध भक्ति जो है इन आठों लक्षणों के परे है, और वो है वैष्णवता, और वो रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमें सिखाए हैं कि पाप और पुण्य से परे, स्वर्ग और नर्क से परे, ये है गोलोक वृंदावन धाम, ये है वैकुंठ वास, और ये है शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो हमने परिवर्तन, हमारे जीवन में जो हमें ये परिवर्तन लाना है, ये परिवर्तन जो इतना महत्वपूर्ण है जिसके बिना आध्यात्मिक संसार तो छोड़ दीजिए, इस भौतिक संसार में भी हम सुखी और समृद्ध नहीं रहेंगे। तो हमारा मुद्दा चल रहा था चेंज, परिवर्तन के ऊपर, और हमने ये जो अंग्रेजी का शब्द है चेंज, इसको एक एक्रोनिम बनाया था कि हमारी साधना भक्ति में जब तक हम ये परिवर्तन नहीं लाते, सबसे पहले हिम्मत, करेज, अपने आप को बदलने की हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे थे कि बहुत बार हमें डर रहता है कि मैं यदि अभी शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तो क्या होगा। अभी यदि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तो क्या क्या होगा, पूरे संसार में कितना परिवर्तन हो जाएगा मेरे भौतिकतावादी न होने से। तो उसके लिए हमें मेहनत, हार्डवर्क, एक है हिम्मत, हार्डवर्क, और उसके साथ साथ हमारे आंतरिक चेतना एब्जॉर्प्शन है कि नहीं। नेगेशन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेशन, कि जो प्रतिकूल चीजें हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं हमारे परिवर्तन के लिए, ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने जीवन से दूर करना और मुआयना करते रहना, गेज अर्थात मूल्यांकन करते रहना कि कितनी प्रगति मेरी हो रही है परिवर्तन के इस पथ पर, और क्या ये परिवर्तन मेरे लिए और इस मनुष्य समाज के लिए इफेक्टिव है कि नहीं। ई स्टैंड्स फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज विद इन अस। तो हमने ये एक एक गुण के उदाहरण लिए थे पिछली बार, इसलिए हम वापस से केवल एक रिकैप चल रहा है अभी तक बाय द वे। तो करेज के लिए हमने उदाहरण मृगारी का लिया, हार्डवर्क के लिए ध्रुव महाराज का, एब्जॉर्प्शन के लिए हरिदास ठाकुर, नेगेशन के लिए अजामिल, गेजिंग के लिए जड़ भरत, इफेक्टिवनेस के लिए नारद मुनि। तो हमने ये जो मंदिर का एक कोट लिया था वो कोट हम फिर से लेंगे अब परिवर्तन के संदर्भ में। टेम्पल मीन्स चेंज। यदि हम ये जानना चाहें कि मंदिर को किसी और शब्द से जाना जा सकता है क्या, इज देयर अ सिनोनिम फॉर टेम्पल, यस, दूसरा एक और शब्द मंदिर के लिए है परिवर्तन, चेंज। तो हमने ये जो कोट लिया था, सिंपली गोइंग टू टेम्पल doesn't make you a devotee of Krishna any more than simply standing in a medical college makes you a doctor. ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है समझना, क्योंकि कलयुग में, शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जो कर्मकांड विचार है वो बहुत ही गहराई से उसने अपनी पकड़ रखी हुई है। कर्मकांड विचार क्या है कि मैं कुछ करूं मुझे उसके बदले क्या मिले, कैलकुलेटिव मेंटालिटी जो होती, मैं इस देवता की उपासना कर रहा हूं, मैं ये यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या क्या मिलना, फ्रूटिव मेंटालिटी श्री प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया। तब होता क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में ये सब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर भगवान तो केवल शुद्ध भक्ति देने के लिए खड़े रहते हैं उस मंदिर में, और उल्टे जो उस शुद्ध भक्ति के बीच में बाधाएं आती हैं भगवान तो उसको पहले ले लेते हैं, देना तो छोड़ो। तो इसलिए बहुत बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनको शुद्ध भाव से अपने आप को अर्पण करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि यदि कोई ये पहचान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण वो केवल जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरत है वो देंगे, जो हम लिस्ट लेके मांगते फिरते हैं यहां वहां, वो लिस्ट पहले तो फाड़ेंगे वो। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम उस चेतना में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आते हैं और फिर जब पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख्य प्रयोजन अपने मंदिरों में अर्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत करने का यह है कि वो अब हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और वो जो भौतिक लिस्ट है हमारी उसको फाड़ देते हैं और हमें वो केवल स्वयं की शुद्ध कृष्ण भक्ति या प्रेम देते हैं। तो जब ये धीरे धीरे हमें समझ में आता है तो हम भगवान के मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में, अंग्रेजी में एक शब्द है पेरिफरी में रहते हैं, पेरिफरी, पेरिफरल डिवोटी, मतलब ज्यादा अंदर नहीं घुसना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी लगती हैं कृष्ण मंदिर की, विशेष रूप से इस्कॉन में जो कृष्ण की पूजा होती है अच्छी लगती है। क्या क्या अच्छा लगता है? श्रृंगार ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरे सेलफोन के वॉलपेपर के लिए अच्छे फोटोज मिलेंगे मुझे, है ना। हम देखते हैं कितने लोग सब सेलफोन लाला कितने फोटो खींचते हैं, मेरे लैपटॉप के वॉलपेपर के लिए अच्छे फोटोज, इस्कॉन के अच्छे फोटोज होते हैं। और प्रसादम तो खैर है ही, क्या कहना उसके विषय में, और पैसे भी नहीं लेते, पैसे भी नहीं लेते। तो कई बार होता क्या है कि दर्शन लेने के लिए हम एकदम आगे, प्रसाद लेने के लिए मंदिर के बाहर, लेकिन बीच में जो चलता है उससे डर लगता है ना। एकदम सामने अच्छा लगता है दर्शन, एकदम बाहर अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल, लेकिन ये जो हमारे पिंक मार्बल और ये फाउंटेन के बीच का जो एरिया है यहां पे बैठने के लिए डर लगता है, क्योंकि यहां पर ये जो भागवत भगवत गीता से सुनाते हैं बहुत डेंजर होता है, वो हमारे भौतिक आसक्तियों की जो बुनियाद है उसको हिलाता है, और केवल हल्के से नहीं हिलाता, वहां पर डायनामाइट लगा के फोड़ देता है उसको, उस बुनियाद को। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने चेंज का एक्रोनिम बनाया वैसे हम टेंपल का एक्रोनिम बनाएंगे कि मंदिर का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक तो मंदिर का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और मंदिर में जब हम आते हैं तो हमारा उद्देश्य मंदिर के उद्देश्य के साथ सिद्ध हो रहा है कि नहीं, ये देखना। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल एक मेडिकल कॉलेज का दिया गया कि एक है मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है मेडिकल कॉलेज का, कि डॉक्टर बनाना। जो साधारण दिखने वाला दो हाथ दो पैर वाला व्यक्ति जब वो इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो तो हमारे संपर्क, मेडिकल कॉलेज के संपर्क से 5-6 साल बाद वो जब बाहर आए, तो किस प्रकार से बाहर आए? हमारे उद्देश्य को सिद्ध करते हुए वो बाहर आए। अब वो केवल एक सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है। पहले जब वो भर्ती हुआ था तो उसके नाम के आगे मिस्टर लगाता था, मिस्टर सो एंड सो। अब 5-6 साल बाद मेडिकल कॉलेज के संपर्क में आने के बाद क्या लगाता है? डॉक्टर लगाता है। तो उस विद्यार्थी का उद्देश्य क्या था? वही था, है ना? मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य उसके मिस्टर को डॉक्टर बनाना, नाम को बोल रहा। तो मिस्टर से डॉक्टर में परिवर्तन, ये कॉलेज का उद्देश्य था। विद्यार्थी वो जब कॉलेज में भर्ती हुआ, उस मेडिकल कॉलेज में, तो उसको यदि भर्ती होने से पहले कोई पूछता कि भाई तुम क्यों भर्ती हो रहे, तो क्या कहेगा वो? डॉक्टर होने के लिए। हाँ, कोई भी मेडिकल कॉलेज में जो अभी अभी भर्ती हो रहा है उसको यदि आप पूछो तो गलती से भी नहीं बोलेगा कि पान पट्टी की दुकान लगानी है इसलिए सीखने जा रहा हूं कि कैसे चूना लगाया जाए। नहीं, बाद में हो जाता अलग बात है। तो गलती से भी नहीं बोलेगा वो कि मैं वहां इंजीनियर बनने जा रहा हूं या मैं वहां पर कोई बिजनेस सीखने जा रहा हूं, नहीं, वहां पर डॉक्टर बनने जा रहा हूं। तो उसका उद्देश्य और कॉलेज का उद्देश्य एक, तब जाकर वो सफल होता है। दोनों सफल होते हैं, कॉलेज भी सफल होता है और विद्यार्थी भी सफल होता है। केवल मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर मंदिर का एक उद्देश्य, हालांकि आजकल तो बहुत से अप्रामाणिक भी मंदिर हैं जहां पर उनको पता ही नहीं कि वो मंदिर का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परंतु जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि एक प्रामाणिक मंदिर, वैदिक मंदिर, उसका उद्देश्य क्या है और जो उस मंदिर में जा रहा है क्या वो मंदिर के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना रहा है क्या, ये महत्वपूर्ण है। परंतु होता क्या है कलयुग में, मंदिर का एक उद्देश्य होता है और जो मंदिर में आ रहा है उसका बहुत ही विपरीत उद्देश्य होता है। मतलब ये किस प्रकार से है, मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य है डॉक्टर बनाना और विद्यार्थी एंट्री कर रहा है इंजीनियर बनने के उद्देश्य से, विरोधाभास है। तो कृष्ण के जो मंदिर हैं, प्रामाणिक कृष्ण के मंदिर, वो जीव को भौतिक आसक्ति से छुड़ाने के लिए, ये उनका उद्देश्य है। और बहुत बार जीव मंदिरों में जाते हैं अपनी भौतिक आसक्तियों को और पक्का करने के लिए, इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योर्ड करने के लिए कि भगवान ये सब मेरी आसक्तियां, ये लिस्ट है, आप पॉलिसी निकालो इंश्योरेंस पॉलिसीज की, मैं प्रीमियम भरता हूं। तो मैं कहता हूं टेम्पल इज नॉट वेयर वी शुड गेट अवर मटीरियल डिजायर्स फुलफिल्ड, टेम्पल इज ए प्लेस वेयर वी शुड गेट अवर मटीरियल डिजायर्स प्यूरिफाइड, नॉट फुलफिल्ड बट प्यूरिफाइड। तो अब हम एक एक जो अक्षर हैं अब इस टेम्पल अल्फाबेट से हैं उसको लेंगे। टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एम स्टैंड्स फॉर मेडिकेशन, पी फॉर purification, L for love, finally engagement. जो चेंज आपने अगर गौर किया होगा उसके भी इतने अल्फाबेट्स हैं, 6 अल्फाबेट्स. चेंज शब्द के भी 6 अल्फाबेट्स हैं, टेंपल के भी 6 अल्फाबेट्स. इसलिए हमने पिछली साइड में क्या लिखाया था, टेंपल इक्वल्स चेंज, चेंज इक्वल्स टेंपल. कि मंदिर में हम आ रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन ये हो रहा है कि नहीं. तो ये 6 चीजें मंदिर का उद्देश्य, कि मंदिर हमें ये सब प्रदान कर कर देते हैं. प्रामाणिक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ये सब प्रदान कर कर देते हैं. और हमारा उद्देश्य क्या, कि हमें ये 6 चीजें मंदिर से प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, या हम ये 6 चीजें प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं हमारे प्रयास से. फिर से यदि वही मेडिकल कॉलेज का उदाहरण लें, तो मेडिकल कॉलेज ने तो सारे सिस्टम्स और फैसिलिटीज बना दिए हैं, क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है, ऑथोराइजेशन है, सब कुछ है कॉलेज का. अब स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो कितना लाभ लेता है ये फैसिलिटीज का. जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, इन योर कॉलेज यू हैव अ टीवी रूम ऑल्सो, अ कैंटीन ऑल्सो, अ रेक रूम ऑल्सो, बट यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज टू सिंपली सिट इन द टीवी रूम फॉर 24 आवर्स और गो टू द रेक रूम एंड प्ले टेबल टेनिस और कैरम. दोज आर ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सब. तो कोई कॉलेज जा रहा है सालों साल, लेकिन रोज जाकर खाली टीवी रूम में बैठ रहा है, कैंटीन में बैठ रहा है, क्लासरूम में बैठा ही नहीं कभी. तो वैसे ही ये जो मंदिर, अगर इसको हम कॉलेज की उपमा दें तो ये यहां पे क्लासरूम है. होता क्या है कि कैंटीन यहां वहां, हाँ वो कैंटीन भी कॉलेज कैंपस के अंदर ही है. तो हमें ये देखना है कि हम वो फैसिलिटीज का कितना, एक्चुअल जो पर्पज है उस कॉलेज का, क्या उसका हम कितना लाभ ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है जानना. अब हम एक एक ये जो क्वालिटीज हैं मंदिर के, उद्देश्य हैं, उस पर हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के मंदिर बनाए, तो प्रभुपाद ने इन इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा हमको कैसे ये 6 जो क्वालिटीज हैं या उपलब्धियां हैं इसकी फैसिलिटी उपलब्ध करा कर दिए. तो ट्रैंक्विलिटी का अर्थ है, जब हम प्रामाणिक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आए तो हम हमारे तमोगुण रजोगुण से बाहर या ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित हों, इसको कहते हैं ट्रैंक्विलिटी. और मेरे ख्याल से अधिकांश जो हम लोग यहां पर आए हैं, पहली दफा या कितने भी दफा हम जब आए भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक मंदिर में, तो हमने ये अनुभव किया कि बाहर जितना रजोगुण तमोगुण, जितना शोर शराबा बाहर, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो एक अलग वाइब्रेशंस जिसको बोलते हैं उसका अनुभव किया. मुझे याद है सबसे पहले जब बंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर में मुझे मेरे भाई लेकर जा रहे थे, तो वो मंदिर ऐसी एरिया में सिचुएटेड है कि आसपास उस समय तो वो नीचे एक टिंकरवेल हाई स्कूल और भोलास कोचिंग क्लासेस सब जगह शोर शराबा, वो बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ उनकी रंगरेलियाँ चल रही हैं, कोचिंग क्लास तो बहाना होता था, हम वही बोलते थे कि कौन सा भोलापन चल रहा है भोला क्लासेस में। तो जब मुझे याद है पहली दफा, आप यदि गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 7 KM मुंशी मार्ग से, तो उस समय तो स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं दिखता था मंदिर का, अभी थोड़ा तो बाहर से दिखता है कि मंदिर है यहाँ। तो मैंने पूछा मंदिर इधर तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे मंदिर के, थोड़े लक्षण तो होने चाहिए ना दूर से दिखते मंदिर कि हाँ जैसे डोम्स हैं और थोड़ा कुछ सत्व गुण, तो कुछ नहीं, बाहर पूरा सब जगह पर कोलाहल मचा हुआ है। परंतु जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर प्रवेश किया राधा गोपीनाथ मंदिर में, तुरंत ऐसे लगा कि जैसे आप एक कोई दूसरे प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में प्रवेश किए, कंप्लीट चेंज। और ये अनुभव बहुतों का हुआ है, केवल अकेले मेरा नहीं, बहुतों का ऐसा अनुभव हुआ। मैं वहां पर एक इंग्लिश गीता कोर्स एक बार ले रहा था, 6 सेशन कोर्स। तो 6 सेशन कोर्स में एक व्यक्ति वो रोज आकर बैठकर सुनकर पूरा 6 सेशन हो जाता था, कभी उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कभी वो मिला नहीं। पूरे 6 सेशन होने के बाद वो मिला मुझसे, उसका नाम था प्रमोद शेट्टी, बहुत ही वो शक्तिशाली व्यक्ति, एकदम मस्कुलर आदमी जैसा। तो मुझे आके कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये जो मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर, उसने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो फिर पूरे 6 सेशन सुनने के बाद फिर उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है जो मीरा रोड में रहती है, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, और शर्त ये थी, अभी वैलेंटाइंस डे गया, वो वैलेंटाइंस की शर्त थी उसकी, कि शर्त ये थी कि वो कुछ प्रपोज करना चाहता था वैलेंटाइंस के दिन। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी शर्त है कि वो मंदिर के पास ही रहता था, तारदेव में रहता था। गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम वहां के इस्कॉन के मंदिर में जाना शुरू करो, और तुम्हारे अंदर जो इतना पैशन है वो उससे छुटकारा पाओ, तब जाकर तुम्हारा प्रपोजल मैं स्वीकार करूंगी। तो उसने कहा मैं जब पहले दिन आया तो मुझे कोई सरोकार नहीं था इस्कॉन मंदिर से, मुझे केवल मेरी गर्लफ्रेंड का हृदय जीतना था, उसने जो शर्त रखी थी, तो इसलिए मैं आया था। और क्योंकि वो एक शेट्टी, और जनरली शेट्टीज वो उनके होटल्स होते हैं बहुत, तो उसका तारदेव में परमिट रूम वाला होटल, आप यदि जानते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसको परमिट रूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद नरक में तो परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। तो उसका तारदेव में ही वो रेस्टोरेंट और बियर बार, परमिट रूम, ये सब, तो सब प्रकार शराबी कबाबी सब चीजें उसने की हुई वहां पर, वो मंदिर में आता। तो उसने कहा कि यहां पर जैसे ही मैं पहले दिन मैंने प्रवेश किया, और पहले दिन कब प्रवेश किया, शयन आरती के समय। अब देखो गौर आरती के समय फिर भी हमारे भक्त कीर्तन करते हुए नाचते वगैरह, शयन आरती के समय एकदम वहां पर अब भगवान सोने जाने वाले हैं, तो फिर और ज्यादा ट्रैंक्विलिटी का जो अनुभव उसको हुआ। और उसने कहा कि मेरे अंदर जितना भी ये पैशन था, मैंने आज तक ऐसा म्यूजिक नहीं सुना जो कि मुझे मेरे रजोगुण से सत्वगुण में मुझे लाए। मैंने आज तक ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था कभी लाइफ में। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि जो भी मैंने म्यूजिक आज तक सुना, यदि मैं न्यूट्रल अवस्था में हूं तो फिर नाचना कूदना फांदना शुरू करता था मैं, लेकिन यहां पर वो शयन कीर्तन सुनने के बाद मेरा अंदर जो रजोगुण था वो कम होने गया। कौन माने लगा। और फिर उसे पता लगा कि इसके पीछे एक फिलॉसफी है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि वहां पर जाके खाली तुम दर्शन मत लो, उधर जाके तुमको लेक्चर सुनना है, और लेक्चर सुनकर मुझे बताना है फोन पर कि क्या सुना। तो उसने पहले सोचा कि मैं किताब खरीद लूंगा, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, बोल दूंगा कि, लेकिन वो किताब और डिफिकल्ट था उसको समझना। तो उसने कहा ठीक है, लेक्चर ज्यादा आसान है, किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो 6 सेशन कोर्स में, और फिर जो जो सुनता था वो ध्यान से इसलिए सुनता था कि रिपोर्टिंग करना है, फोकस था वो, इसलिए ध्यान से सुनता था कि उसको रिपोर्टिंग करना है। तो उसने फिर जब फिलॉसफी को समझा तो धीरे धीरे उसको लगा, उसने फिर फाइनली 6 दिन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा, मुझे सच सच बताओ ये तुम्हारा षड्यंत्र था क्या। उसने कहा हां, मुझे तुमसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल तुमको भक्त बनाना था, क्योंकि वो मीरा रोड के मंदिर में इस्कॉन की डिवोटी थी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कोई अफेयर नहीं करना है, परंतु मैंने सोचा कि तुमको मुझ में इतना इंटरेस्ट है तो मैं उसका फायदा उठाना चाहती थी। तो उसने सोचा कि मैं, उसने कहा उसको कि मैं ब्रह्मचारियों के जैसे लेक्चर तो नहीं दे सकती, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, मैं ब्रह्मचारियों की तरह लेक्चर नहीं दे सकती, बाकी प्रीचर्स की तरह प्रचार नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारा ये जो मुझ में इंटरेस्ट है उसको यूज कर तुमको सुनवाऊं लेक्चर। और इस व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आया, ये व्यक्ति मुझे कह रहा था कि अपने होटल में, अब ये ओनर है होटल का, सब कुछ अभी वो बंद तो नहीं कर सकता, वहां पे उसको गोविंदा तो नहीं बना सकता तुरंत, तो पहले तो वो रोज अपने होटल में ही उसके मन पसंदीदा जो भी बनवा के खाता था, लेकिन अब जब वो पूरा 6 सेशन सुन लिया और प्रैक्टिस करने लगा तो अपने घर से खुद कुक करके, कोई उसके माता पिता कोई बनाते नहीं थे उसके लिए बिना प्याज लहसुन का, तो खुद कुक करके टिफिन लेके आता था। वो कहता था कि इतना अम्यूजिंग साइट वहां पर होता है मेरे होटल में कि सब लोग वहां पर तंगड़ी कबाब खा रहे हैं और मैं भगवान का महाप्रसाद खा रहा हूं। वहां पे सब लोग दारू पी रहे हैं और मैं तो एक बार अपने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का चरणामृत पी रहा था। तो देखो ये व्यक्ति के अंदर इसकी परिवर्तन की शुरुआत मंदिर में इसने जो ट्रैंक्विलिटी अनुभव किया। एक और व्यक्ति, ये वैलेंटाइन से मुझे याद आ रहा है कि तो एक व्यक्ति रात को अपने शयन दर्शन हो चुका था और मैं अपना चटाई वगैरह लेकर, अब हम लोग सब टेंपल हॉल में सोने जा रहे थे, तो एक व्यक्ति भागते हुए आया 9:30 बजे रात के, भागते हुए आया, मुझे बोलता है प्रभु भगवान कहाँ है। तो उस समय हमारे मंदिर में भगवान प्रभु आप जानते होंगे, तो मुझे लगा शायद भगवान प्रभु को पूछ रहा है, तो वो रहते थे, लेकिन वो उस समय अपना दौंड में फार्म शुरू हुआ था तो दौंड में चले गए थे वो, तो वो पूछने लगा प्रभु भगवान का। मैंने कहा वो दौंड में, बोला अरे मंदिर है ना ये, मैंने कहा हाँ मंदिर है, तो बोले तो फिर वो दौंड में क्या कर रहे हैं, मैंने कहा वहां पर भी मंदिर है हमारा, वहां पर फार्म है। तो अब तक हम दोनों का कॉन्वर्सेशन दोनों अलग अलग लेंस पे चल रहा था, वो उसका जो बोल रहा था वो टेंजेंट जा रहा था, मैं जो बोल रहा था उसके टेंजेंट जा रहा था। तो फाइनली बोला अरे मैं पिछले हफ्ते आया था आपके भगवान जो कृष्ण भगवान, बोला अच्छा उनके बारे में पूछ रहे हैं आप, वो हैं अभी सो गए वो। तो फिर मैंने कहा, मैंने उसको पूछा कि इतना उतावलापन, मतलब जनरली इतना उतावलापन बहुत रेयरली दिखता है कि उसको इतना अर्जेंटली भगवान से मिलना था। तो उसने कहा कि मैं वैलेंटाइन से पहले आया था आपके भगवान के सामने, मैंने मन्नत मांगी थी कि यदि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वैलेंटाइन के दिन तो मैं जरूर आके मेरी मन्नत पूरी करूंगा, आपको कुछ तो चढ़ावा चढ़ाऊंगा वगैरह। तो मुझे अभी हो गया हो, उन्होंने मेरी मन्नत पूरी कर दी, तो मुझे अभी वो मेरा जो पार्ट है वो निभाना। तो फिर मैंने उसे समझाया कि देखो क्या मन्नत मांगी, मैंने गर्लफ्रेंड ये वो गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगा। तो मैंने कहा देखो तुम कह रहे हो कि यहां पर भगवान ने तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिला दिया, तो तुम ये मानते हो ना कि इनके अंदर कुछ शक्ति है। हाँ क्यों नहीं मानता हूं, बोले यही भगवान पर्सनली कहे हैं गीता के अंदर कि यदि कोई शुद्ध भाव से इनको शरणागत होता है तो ये उनके फ्रेंड बनते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ दो ये खुद उनके फ्रेंड बनते हैं। तो क्या आप चाहोगे कि केवल 14 फरवरी को नहीं बल्कि पूरे जीवन भर ये भगवान आपके फ्रेंड बने? हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा प्रपोजल है। तब मैंने उनको कहा कि भगवान गीता में यह आश्वासन दिया सुरदम सर्वभूतानाम कि वो सबके सुरद हैं और वो ऐसे फ्रेंड हैं जो कभी छोड़ेंगे नहीं हमको। तो वहां से रात के 10 बजे थोड़ा सा उनको प्रीचिंग हुआ, उसके पश्चात फिर वो व्यक्ति बहुत समय तक मैं उसको देखता था कि रोज उसको मैंने कहा कि दर्शन हमारे 9:45 बजे खुलते हैं, तो रोज शयन दर्शन के लिए वो आता था। और फिर मैंने 1 महीने बाद उसके हाथ में बीड बैग देखा। तो ट्रैंक्विलिटी, ये जो इसका कारण क्या है, मंदिर के अंदर ये जो एक सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण, क्योंकि प्रभुपाद ने देखिए किस प्रकार से मंदिर के कार्यक्रम गतिविधियां और निर्माण, एक ब्रह्मचारी अभी ब्रह्मचारी और राधा गोपीनाथ में वो मुझे बता रहे थे कि जो पहली दफा शयन दर्शन के समय प्रवेश किए राधा गोपीनाथ मंदिर में तो केवल अगरबत्ती की जो महक है सुगंध है, वो अगरबत्ती की सुगंध उनको इतनी अच्छी लगी कि आंखों से आंसू आने लगे, कि ऐसी ट्रैंक्विलिटी, प्रशांतता उन्होंने अनुभव नहीं की। अब बहुत साल बाद हम लोग आ जाते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि अगरबत्ती जली कि नहीं जली है। ये समझ में आ जाता है कि यहां पर अगरबत्ती जल रही है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन राई जीरे का तड़का लग गया, उसकी सुगंध आ जाती है। अच्छी बात है, वो भी भगवान के संदर्भ में। तो प्रभुपाद ने चारों तरफ आप देखो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें, ऑल्टर बंद भी है तो यहां वहां चेहरा घुमाओगे तो क्या दिखेंगे, वही भगवान श्री कृष्ण अपनी अलग अलग लीलाओं में, कहीं पर भी चेहरा घुमाओ। और जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा में उनका तदीय है, पेरिफेरनेलिया, जो भी घूम रहे हैं वो भी वो भगवान के ही हरे कृष्णा करते हुए घूम रहे हैं। तो यहां से क्या होता है कि डिवाइन वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, एक ऐसा एक किस्सा भी हुआ है, प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि कोई बहुत ही पापमय भी जगह है, अगर वहां पर जाकर भक्त शुद्धता से कीर्तन भी करते हैं और चले जाते हैं कीर्तन कर, तो परमानेंटली वहां पर डिवाइन वाइब्रेशंस उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। प्रभुपाद कहते थे दे हैव परमानेंटली इंस्टॉल द डिवाइन वाइब्रेशंस ऑफ हरिनाम संकीर्तन, ऑफ कृष्णा थ्रू हरिनाम संकीर्तन। तो सोचो अगर ये हमारा मंदिर हम लें कि रोज यहां पर कितना भगवान का नाम, कितने भगवान की कीर्ति का गान यहां पर होता रहता है, सुबह से लेके हमारे जानकीनाथ प्रभु 3 बजे से शुरू हो जाते हैं, तो 3 बजे से हमारे भक्त जो हैं एकदम नहा धो के कड़क तिलक लगाकर बीड़ बैग हाथ में लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 3 बजे से फिर मंगल आरती, उसके बाद में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर उसके बाद में आरतियां चलती है, उसमें कीर्तन चल, भगवान की आरतियां, उसमें मंत्र, प्रभुपाद का कीर्तन, और अलग अलग समय पे भक्त आकर बीड़ बैग उठा उठा कर जब करते रहते हैं रात के 10 बजे तक, तो कोई शाम को 5 बजे 16 माला शुरू करता है, कोई 8 बजे शुरू करता है, तो कोई ना कोई यहां पर उसने अगर पहली दफा भी आया है, बीड बैग टंगी हुई उसने देखी तो बीड बैग उठाएगा, उंगलियां डालेगा बीड बैग के अंदर तो मुंह से केवल हरिनाम ही निकलने वाला है उसका, और कुछ नहीं निकलेगा, चाहे कितने भी बाहर गाने सुनकर आया हो, यहां पर आकर तुरंत चैनल चेंज हो जाता है। तो ये एक अनुभव मंदिर का, ट्रैंक्विलिटी, शुद्ध सत्व। इसके पश्चात एजुकेशन, तो प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिरों में केवल आकर शांति का अनुभव करने के लिए मंदिर नहीं खोले। जैसे हाँ, बहुत लोग बाहर इतना कोलाहल में रहते हैं, मंदिर आते हैं तो नहीं, शांति प्राप्त होती है। जो उस दिन मैं यहां बाहर जप कर रहा था तो एक महिला, उसने कहा कि मेरा जो लड़का है फार त्रास देतो मला, काही काहीतरी बोला तुम्ही त्याला. तो मैं बोला काय बोलू मी काय बोलू. तो मैंने पूछा कशा प्रकारे त्रास देतो. तो बता रही थी कि घर पे आता है चीजें फेंकने लग जाता है यहां वहां पागलों की तरह, गुस्सा करता है, इतना क्रोध है उसके अंदर. तो कह रही थी कि मैं यहां पर बैठती हूं शाम को आकर, आपको पता है क्यों? उसने पूछा मुझे, मैंने कहा बताओ क्यों. क्योंकि वो घर में इतना कोलाहल मचा कर रखता है, तो यहां पर आने के बाद मुझे शांति, बहुत शांति का अनुभव होता है. तो अब देखो लोग क्या क्या कारणों से मंदिर में आके बैठते हैं, कि बाहर जो इतना केओस जिसको बोलते हैं रजोगुण, उससे दूर हटने के लिए यहां पर आकर बैठते हैं. तो प्रभुपाद ने उसके बाद कि वो शांति हम कैसे घर में भी लाएं, उसके लिए प्रभुपाद ने एजुकेशन दिया है इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा, स्क्रिप्चर्स. जैसे मुझे याद है जब मुझे बताया गया, मेरे बड़े भाई ने जब मुझे बताया कि इस्कॉन का मंदिर है दिल्ली में, उन्होंने एड्रेस निकालकर मुझे पोस्ट किया कि ये एड्रेस है ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर राधा पार्श्वनाथ टेम्पल, वहां जाओ संडे को जाओ. तो क्योंकि दिन में बहुत भीड़ होती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तो मैं शाम को जाता था. तो मुझे पता नहीं था संडे फीस्ट भी कुछ होता है, तो मैं शाम को जाता था राधा पार्श्वनाथ मंदिर में संडे शाम को. और मैं देखता था बाहर सब पतले मतले पड़ी हुई हैं. तो मैं दो तीन हफ्ते जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यहां पे कुछ तो दिन में होता है. हाँ, आप देखो कभी संडे, संडे फीस्ट के बाद या अपना जो वेडनेसडे प्रोग्राम उसके बाद में आप थोड़ा माहौल देखोगे आसपास, तो समझ में आएगा कि यहां पे कुछ पार्टी हुई है. तो फिर मैंने एक बार पूछा वहां के डिवोटी को कि यहां पे क्या होता है, संडे को क्या होता है. बोले संडे को 12:30 बजे यहां पे आरती होती है दिन में, उसमें कीर्तन होता है, डांसिंग होता है. अच्छा, तो फिर मैं 12:30 की आरती में आया तो वहां पे देखा डांसिंग कीर्तन हो रहा है. तो पूरा डांसिंग कीर्तन हुआ, 1 घंटे तक चला, 1:30 बजे तक. फिर मैं निकल रहा था, फिर वो डिवोटी ने, अरे अभी तो लेक्चर होगा. तो मैं पहली दफा कि मंदिर के अंदर लेक्चर भी होता है ये मुझे पता लगा. क्योंकि बचपन से हमको, मुझे क्या अनुभव था मंदिर जाने का, मंदिर जाओ वो घंटी बजाओ, वो दर्शन लो, वो पुजारी कुछ दे देंगे, वो मिश्री खड़ी साकर कुछ हाथ में दे देंगे, बस जाओ. लेक्चर वेक्चर कभी अनुभव? तो सबसे पहले पता लगा कि यहां पे लेक्चर भी होते हैं. तो देखो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि प्रामाणिक भगवान के जो मंदिर, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि हमें सिखाएं कि हम घर जाकर अपने घर को कैसे मंदिर बनाएं. मेडिकेशन, चैंटिंग, तो जो ये औषधि है हरिनाम संकीर्तन की औषधि चैंटिंग, ये एक ऐसी चीज है कि शुरुआत में जो हमको बहुत कड़वी लगती है. अभी हाल ही में एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि आप कहते हो कि ये जो भगवान का नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं, कली काले नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में कृष्ण अवतार अपने नाम के रूप में. तो पूछ रहे थे कि अब कोई भी फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स है उसमें और आपके ये हरे कृष्ण में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या अंतर है? एनी अदर साउंड वाइब्रेशन एंड योर महामंत्र, व्हाट इज द डिफरेंस? वो भी तो अक्षर ही हैं, वो भी तो शब्द हैं। तो मैंने एक उदाहरण उनको दिया कि एक दफा एक घर में बच्चा खेल रहा था और माँ बच्चे को कहती है कि जो भी इतना तुमने पेपर वेपर बिखरा कर रखे हुए हैं ये लिविंग रूम में, वो सब को तुम कचरे के डब्बे में डालो। तो माँ ने आदेश दिया सब कागज को उठा के कचरे के डब्बे में डालो। तो बच्चा पूछता है कि कचरे का डब्बा तो छोटा है और ये कागज इतने सारे हैं। तो माँ कहती है फाड़ फाड़ कर डालो कागज को। तो एक एक बड़े बड़े पन्नों को छोटे छोटे चित्रों में फाड़ रहा है और कचरे के डब्बे में डाल रहा है। और फिर मदर किचन से बाहर आती है और वो देखती है कि उन कागज के टुकड़ों में, जो भी कागज के पन्ने, उसमें एक 500 रुपए का नोट भी नीचे गिरा हुआ था। तब ये बच्चा जैसे बाकी कागजों को फाड़ के डाल रहा था वैसे 500 रुपए का भी उसने उठाया और फाड़ने वाला था। हे, इसको नहीं फाड़ने का, क्यों नहीं फाड़ने का, ये भी तो कागज ही है। अभी तक जितने कागज मैंने फाड़ कर डाले ये भी तो एक कागज ही है। नहीं, ये कागज विशेष है, इसको हम कचरे के डब्बे में नहीं डालते। लेकिन कागज ही तो है। हाँ, कागज ही है, लेकिन ये रद्दी में नहीं जाता। रद्दी देने से ऐसे और कागज मिलते हैं। तब तक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, बोला कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे बताओ मैं कैसे विश्वास लाऊं कि ये जो कागज जिसको आपने फाड़ने से मना किया और अभी तक मैंने जो कागज फाड़े हैं, मुझे विश्वास दिलाओ कि दोनों में अंतर है। कैसे उस बच्चे को अब मां विश्वास दिलाएगी? तो मां ने कहा ठीक है, तुझे पता लगाना ना, तुझे क्या अच्छा लगता है बता। उन्होंने कहा चॉकलेट अच्छी लगती है मुझे। अच्छा ठीक है। तो कचरे के डब्बे में से उन्होंने एक कागज निकाला, बोला ये ले एक हाथ में और ये जो 500 रुपए का नोट है ये दूसरे हाथ में ले, जा दुकान पर और उसको दिखा, दोनों कागज दिखा और देख वो कौन से कागज को लेता है और तेरे को चॉकलेट देता है। तो वो जाता है पूछता है कि मुझे 10 चॉकलेट चाहिए और वो कचरे के डब्बे वाला जो कागज है वो उसको देता है। बोले ए क्या मजाक समझाएगा? फिर वो 500 रुपए वाला नोट दिखाता है। ये ठीक है। तब उसको विश्वास होता है कि ये विशेष कागज है। क्यों? क्योंकि ये मुझे चॉकलेट दिलाता है। तो मैंने इस व्यक्ति को कहा उसी प्रकार से भगवान का नाम और कोई अन्य नाम में अंतर क्या है कि भगवान का नाम जब कोई जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो जो नाम जप है वो उस करेंसी नोट की तरह है जो हमें कुछ उपलब्ध करा कर देगा। और मैं कह रहा था कि शर्त लगा लो, तुम कोको कोला इसका जप करके दिखाओ, केवल एक राउंड, 16 राउंड नहीं, एक राउंड करो, कोको कोला 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 कोको कोको, इसका एक राउंड करके दिखाओ, क्या देखो तुमको कितना क्या अनुभव होगा, कितना अजीब लगता है एक बार भी बोलना, कितना अजीब लगता है, चाहे उसको आप महामंत्र की स्टाइल में बोलने का प्रयास करो फिर भी अजीब लगता है वो ट्यून में हारमोनियम के साथ। हाँ, कोको कोला कोको कोला 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 कोको कोको कभी हरे कृष्ण महामंत्र के ट्यून पे कोई ऐसे नहीं हंसेगा जैसे आप लोग हंस रहे हैं। तो ये जो अगला मुद्दा है मंदिर मेडिकेशन जो कि चैंटिंग उसके वो जो हरिनाम है, मैंने इनको कहा कि वो जो चैंटिंग है वो उस करेंसी नोट की तरह है, वो आपको क्या प्रदान कर देता है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन जो कि हमारा नेक्स्ट मुद्दा है, प्योर लाइफस्टाइल। ये जो प्योर लाइफस्टाइल है, बहुत बार हम देखते हैं, बचपन में मैं भी कितने मंदिरों में जाता था, मंदिर में गए वहां पर ठीक है शांति का अनुभव किया, दिव्यता का अनुभव किया, लेकिन वापस आकर वही टीवी चालू, वापस आकर वही रोजमर्रा की जिंदगी चालू। परंतु ये जो प्रामाणिक मंदिर का उद्देश्य है कि मेडिकेशन के साथ प्यूरिफिकेशन, अर्थात प्योर लाइफस्टाइल, कि प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा हमें सिखाया है कि आप केवल मंदिर में आकर प्योरिटी मत दिखाओ, मंदिर के बाहर जाकर मंदिर सिखाता है कि आप कैसे प्योर रहो। मैं जब 2005 में यूएस प्रीचिंग की टूर पर था तो वहां पर अटलांटा गया था मैं, तो एक भक्त मुझे एक स्टोरी बता रहे थे कि अटलांटा में एक व्यक्ति, उसका नाम क्रिस मैथ्यूज, ये व्यक्ति 1984 में उसने कॉलेज के अंदर कुछ ड्रग्स वगैरह लेना शुरू किया, ड्रग एडिक्ट बन गया था, और वो एसोसिएशन से उसको ड्रग एडिक्ट बनाया गया, तो मॉर्फिन लेता था वो और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स लेता था। तो वो 1990 तक इतने ड्रग्स लिए उसने, इतना वो आसक्त हो गया, ड्रग एडिक्ट बन गया, तो उसका विवाह भी हो गया। अब वो ड्रग्स इतने कॉस्टली कि उसको मिलते नहीं थे, तो चोरियां करना शुरू किया। तो वो एक दुकान में चोरी करने गया केवल ड्रग्स खरीदने के लिए उन पैसों से। तो इतना उसको नशा चढ़ा हुआ था कि वो वहां पर बेहोश होकर गिर गया, चोरी करते करते गिर गया, और पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया उसको रंगे हाथ, और 8 साल की कैद, और जेल के अंदर अब वो अकेला, उसको कोई ड्रग्स वहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई संग नहीं, परिवार उन्होंने उसको छोड़ दिया अकेला। और वहां पर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यहां पर अब मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, मैंने आज दिन तक कभी आपकी उपासना नहीं की, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हो तो मुझे आप थोड़ी सी कृपा बरसाओ कि आप का जो एग्जिस्टेंस है वो मुझे समझ में आए, मुझे यहां से छुटकारा नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट यू एग्जिस्ट। और उसी साल वहां के प्रिजन में इस्कॉन ने सत्संग प्रोग्राम चालू किया कैदियों के लिए। आपको यदि इस बात की जानकारी ना हो तो मैं बताऊं कि इस्कॉन में एक प्रिजन मिनिस्ट्री है, प्रिजन मिनिस्ट्री है जो कि प्रिजन्स में जा जाकर, जेल में जा जाकर सत्संग कार्यक्रम करते हैं। तो ये जिस जेल में था उस जेल में इस्कॉन का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इसने जब वो सुना और फिर इसने कहा कि मैं आपका प्रोग्राम तो 15 दिन में एक बार होता है, तो मैं 15 दिन क्या करूं, तो भगवद्गीता दी उसको भक्त ने। तो वो जेल में दिन रात भगवत गीता पढ़ता, दिन रात भगवत गीता पढ़ता था क्रिस मैथ्यूज। और इतना परिवर्तन इसमें आ गया कि अब वेजिटेरियन बना सबसे पहले तो ये, और जो भी वो वेजिटेरियन उसके पास वो खाना आता उसको वो भगवत गीता को ऑफर करता, और वहां पर उसने चैंटिंग चालू किया। फिर जैसे ही वो रिहा हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा हो गया तो उसको जल्दी रिहा कर दिया, जैसे ही वो वहां से रिहा हुआ, रिलीज हुआ, वो घर गया। घर पर जाकर उसने कहा कि घर वाले अभी डरे हुए थे कि वापस आएगा, वापस से ड्रग्स शुरू करेगा, वापस से परेशानी होगी इसको लेकर, तो वो तो वाइफ तो रेडी थी डिवोर्स के लिए। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी चाय कॉफी भी नहीं छूने वाला हूं, मैं तो कांदा लहसुन भी नहीं छूने वाला हूं, ये सब कुछ। तो वाइफ ने देखा इतना परिवर्तन जेल में जाने के बाद। तो वाइफ एकदम आश्चर्यचकित हो गई, मुझे पहले पता होता तो पहले इसको जेल में किसी ना किसी तरीके से भिजवा देती। तो फिर इन्होंने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को वो अटलांटा के इस्कॉन मंदिर में लेकर गए, और वहां जाकर फिर उनकी कुछ 1994-95 में उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस्कॉन में केवल एक ही डिपार्टमेंट में सेवा करनी है, प्रिजन मिनिस्ट्री में। और वो आज दिन तक प्रिजन मिनिस्ट्री में अलग अलग जेलों में जाकर लेक्चर्स देते हैं कैदियों को, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल का परिवर्तन उस जेल के प्रीचिंग से हुआ। और वो ये कहते हैं, उनका रियलाइजेशन वो बता रहे थे, उनका ये रियलाइजेशन था कि मेरा परिवर्तन जेल में हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। तो वही भगवान के विषय में मैंने कभी बाहर इतनी उत्कंठा से जानने का प्रयास नहीं किया कि जब मैं जेल में था तब मेरे अंदर वो सारी भावना। तो भगवान ने पूरा अरेंज किया था कि 1984 से जो मैंने मेरे कुकर्म चालू किए थे तो वो सब का एक इकट्ठा होकर जब मैं जेल में गया तो वो साक्षात्कार की कौन है ये भगवान और मैं जानना चाहता हूं उनको। तो भगवान ने फिर रेसिप्रोकेट किया, ही वॉज प्रिपेयरिंग मी टू बिकम वेरी वेरी फेवरेबल इन रिसीविंग हिज मर्सी। अब नेक्स्ट, एल स्टैंड्स फॉर लविंग एसोसिएशन। टेम्पल प्रोवाइड्स लविंग एसोसिएशन, प्रेम। अब प्रेम की जो परिभाषा आजकल जो ये सिनेमा में लोग इतना देखते हैं, फिर से वैलेंटाइंस डे कि जिसको वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये वो दिन है जब हम प्रेम का इजहार करते हैं, मैं हाल ही में हमारे देवामृत महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय परिवार, उनके पास आए और उन्होंने ये रिपोर्ट किया। और देखो ये क्या स्थिति हो रही है आजकल दुनिया में ये बता रहे हो। तो पिताजी बोल रहे थे कि मेरी 8 साल की लड़की वो घर पर आई और 8 साल की लड़की मुझे पूछती है, डैडी हाउ कम यू एंड मम्मी आर स्टेइंग टुगेदर। उसको आश्चर्य हो रहा था कि एक साथ कैसे रह रहे हैं मेरे माता पिता, 8 साल की लड़की। तो पिताजी ने पूछा क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? बिकॉज नन ऑफ माई फ्रेंड्स देयर पेरेंट्स लिव टुगेदर। एवरीवन इज सेपरेटेड. केवल इसके माता पिता एक साथ रह रहे थे, तो उसको आश्चर्य हुआ कि एक साथ कैसे रह रहे, मेरे किसी के फ्रेंड्स के माता पिता एक साथ नहीं है. तो पिताजी ने पूछा, कुछ तो प्रॉब्लम है, हम लोग एक साथ रह रहे हैं. तो वो कहती है, Why don't you stay separate? It will be such fun. One weekend I'll stay with you. One weekend I'll stay with mummy. It will be variety. तो महाराज बोल रहे थे, This is the result of that superficial romance which is considered to be love in this world. जिसको प्रेम का नाम दिया जाता. And therefore in the West, this word love is just so casually used that in one breath they say, I love God, I love my hamburger also. In one breath, the same word is used for both, for God and for dog also, or for anything else also. Parantu prem jo hai, wo uski paribhasha शुद्धता के बाद, जैसे यहां पर मेडिकेशन प्यूरिफिकेशन और उसके बाद जो बचता है वो है शुद्ध प्रेम. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूना श्रवण आदि शुद्ध चित्त करवे उदय. कि वो शुद्ध कृष्ण प्रेम का उदय होता है कब, जब सारे जो कलमश हैं, हमारी बीमारियां, ये सारे प्रदूषण, वो सब जब दूर होते हैं तो वास्तविक जो शुद्ध प्रेम है वो बाहर आता है. और फाइनली जो प्रभुपाद ने एंगेजमेंट किसके द्वारा दिया है, एक्टिव सर्विस. अब देखो, कभी भी मुझे तो ध्यान में नहीं है कि मैं किसी मंदिर में गया हूं और मुझे ये अवसर प्रदान किया गया है कि मैं अपने पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं मंदिर में. इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति का ट्रांसलेशन केवल डिवोशन नहीं किया, डिवोशनल सर्विस. सो द पर्पस ऑफ द टेंपल इज टू एंगेज अवर सेंसेस इन द लॉर्ड्स सर्विस. Not just one, but all our senses in the Lord's service. तो जब तक मंदिर में आने के बाद हमारी पांचों इंद्रियां एंगेज नहीं होती भगवान की सेवा में, मंदिर आना सफल नहीं हुआ है हमारा. तो इसलिए ये जो हमने पांच उद्देश्य मंदिर के और पांच उद्देश्य हमारे, ये दोनों होने चाहिए. जैसे एग्जाम्पल हमने मेडिकल कॉलेज का दिया था. पर्पज ऑफ द टेम्पल इज टू गिव ट्रैंक्विलिटी. अवर पर्पज इज टू गेट दैट ट्रैंक्विलिटी फ्रॉम द टेम्पल. पर्पज ऑफ द टेम्पल इज टू एजुकेट. अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट एजुकेटेड. पर्पज ऑफ द टेम्पल इज टू गिव द मेडिकेशन. अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट ट्रीटेड. Purpose of the temple is purification. Our responsibility to get purified. Love and finally engage in the direct active service of the Supreme Personality of God. और तब जाकर हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन हमें प्रेममय शरणागति दिलाएगा और उस प्रेममय शरणागति से हम फिर गोवर्धन लीला भगवान की ठीक से मना पाएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. किसी का कोई प्रश्न?
धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन दिया इसके लिए. आपने कहा कि प्रभु जी एंगेजमेंट एक्टिव सर्विस, तो शुरुआत के दिनों में हम देखते हैं कि कृष्ण भावना में जो इंद्रिया है आसानी से सेवा में लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो हम लोग वो सेवा में इतना आनंद नहीं ले पाते, वो सेवा करने में इतना उत्साह नहीं दिखाते. तो फिर इसको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि कुछ साल के बाद फिर वो जो सेवा इनिशियल डेज में आनंद दे रही थी या उत्साह आ रहा था, अभी वो सेवा में आनंद नहीं आता। एक कैजुअली करना है इसके लिए कर रहा है, या सेवा लिस्ट में नाम लगा है इसके लिए करना है, या किसी ने बोला है इसके लिए करना है। वो एक मेरा प्रश्न था कि उसको कैसे हम लोग सीरियसली और सिंसियरली ले, क्योंकि प्रभुपाद भी कहते हैं भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, सो इसको कैसे सीरियसली ले। और एक प्रश्न तो और एक प्रश्न ये देखा जा रहा है कि एज अ टेम्पल कमांडर और TMC ये देखा जा रहा है कि कई बार जो सीनियर हमारे जो भक्त है वो प्रसाद के लिए ब्रह्मचारी को बुलाते हैं, और हम जब जाते हैं तो उनका डेडिकेशन जो प्रसाद कुकिंग बनाने का है इतना देखते तो अच्छा लगता है, लेकिन सेम टाइम वो लोग मंदिर में इतना पार्टिसिपेट नहीं होते। बहुत बार देखा गया है कि उनका जो सेवा करने का एटीट्यूड ब्रह्मचारी के प्रति रहता है कि ब्रह्मचारी आएंगे तो 10-10, 12-12 घंटा इतना एफर्ट डाल के सेवा करते हैं, लेकिन सेम टाइम टेम्पल में अगर कुछ सेवा होती है या विग्रहों की सेवा या किचन की सेवा, डीटी किचन की सेवा, गार्लैंड बनाने की सेवा, उसमें उतना इफेक्ट नहीं दिखता एज अ टेम्पल कमांडर, टेम्पल मैनेजमेंट। तो इसको मुझे किस प्रकार से समझना है, ये दो प्रश्न थे गुरु जी।
देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रश्न था कि सालों साल उत्साह से सेवा करते रहना, ये कैसे संभव है, तो हमने एंगेजमेंट से पहले लव, लव से पहले प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन से पहले मेडिकेशन। जब तक प्रेम नहीं तब तक उत्साह नहीं। ये बात सच है कि हम भगवान की सेवा औपचारिकता से कर सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु प्रेम जागृत नहीं करेंगे भगवान के प्रति तो वो एंथुजियाज्म सेवा में नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे हम स्वयं की सेवा कैसे जिंदगी भर करते रहते हैं, है ना, स्वयं की सेवा बचपन से लेके अब तक रोज कितना रगड़ रगड़ के नहलाते हैं शरीर को, कितना खिलाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं शरीर का, क्यों? क्योंकि प्रेम है अपने शरीर से, प्रेम करते हैं। एक मां बच्चे के विषय में, आज भी मैं जब अपनी मदर से बात करता हूं तो सबसे पहले पूछती है प्रसाद खाए कि नहीं, वहां से चिंता है उसको। तो मां प्रेम करती अपने बेटे से, इसलिए उसका उत्साह मरते दम तक बना रहता है अपने बेटे के प्रति, चाहे कितना भी वो निकम्मा बन जाए। तो उत्साह बनाए रखने के लिए, सेवा में उत्साह बनाए रखने के लिए प्रेम जरूरी है। और प्रेम, जैसे कि अगर हम राधा मदन गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, मान लो कि एक सेवा मैं अगर बताऊं, बैकअप कर रहे हैं, तो बैकअप सेवा बर्तन घिसना है, बर्तन घिसना है, और इतने सारे बर्तन, रोज वही बर्तन वही टाइम पे उतने ही इंटेंसिटी से घिसना है, चमकाना है, तो उसके अंदर धीरे धीरे वो उत्साह कम कब होगा, जब हम ये भूल जाएंगे कि किसके बर्तन है। शुरू में लगता है अरे मदन गोपाल जी की कटोरी है, ओ शुरू में एकदम ध्यान से ऐसे पकड़ते हैं जैसे कांच की कटोरी है, ध्यान से। फिर धीरे धीरे हमको भगवान मदन गोपाल जी के प्रति प्रेम नहीं, तो फिर हम भूल ही जाते हैं ये कटोरी, भगवान ने इस कटोरी में खाया है। फिर धीरे कितना खाते हैं तो यदि कोई बैकअप कर रहा है, बैकअप सेवा कर रहा है या किचन में सेवा कर रहा है, तो बैकअप सेवा किचन में सेवा करके अपने अपने काम पर कोई चला जाता है, ठीक है, समय का अभाव होता है तो जाना पड़ता होगा, परंतु ये यदि वो नियमित रूप से जिनकी सेवा कर रहा है उनके विषय में सुनेगा नहीं तो प्रेम नहीं जागृत होगा। तो बैकअप किसकी कटोरियां वो घिस रहा है उस व्यक्ति का गुणगान नहीं सुनेगा तो प्रेम नहीं होगा उस व्यक्ति के प्रति। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है इसलिए जो मलमूत्र है वो भी साफ कर देती है, क्यों? क्योंकि प्रेम है, उसमें भी उसको उसको उत्साह रहता है। तो वही प्रेम जागृत होगा जब हम प्यूरिफाई होंगे, प्यूरिफिकेशन होगा जब मेडिकेशन, और मेडिकेशन कैसे होगा? हियरिंग एंड चैंटिंग। तो जितना हम भगवान मदन गोपाल जी का गुणगान सुनेंगे करेंगे उतना प्यूरिफिकेशन होगा, उतना प्रेम जागृत होगा, उतना उत्साह बना रहेगा। तो ये जो दो विधियां हैं भागवत विधि और पंचरात्रि की, तो पंचरात्रि की क्या है? ये सारी सेवाएं, चाहे वो डीटी किचन में हो, चाहे डीटी रूम में हो, चाहे बाहर हो, वो पंचरात्रि की एक्टिव फिजिकल सर्विस। और भागवत विधि क्या है? बैठ के उनके बारे में सुनना जिनके बर्तन हम घिस रहे हैं, जिनका कुकिंग हम कर रहे हैं। तो ये कारण है और ये एक नुस्खा है जिसके कारण हम उत्साह बनाए रखेंगे सालों साल। क्या दूसरा प्रश्न? हाँ, ब्रह्मचारियों को प्रसाद के लिए बुलाते हैं,
इतने सेवा करते हैं।
मुझे एक बार एक एक घर पे मैंने पूछा कि प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी ये इतने आइटम बनाने क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप आते तभी बनता है। आप इस भ्रम में मत रहो कि ये रोज हमको खाने मिलता है इतना, तो आप चुपचाप खा लो जितना खाना है, हमको तो खाने तो बाद में। लंदन में मुझे बोला था एक, तो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मचारी जब जाते हैं तो इतने 10-10 आइटम बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये साल में एक बार आएंगे, महीने में एक बार आएंगे, तो बना लेते हैं उत्साह। लेकिन अगर वही 10 आइटम रोज बनाने बोलो, नहीं होगा। एक तो फिजिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो करना। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो चीज हमको बहुत प्रचुर मात्रा में दी जाती है, जैसे मंदिर में जो हम रहते हैं, हमको प्रचुर मात्रा में भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन मिलता है, तो कलयुग का एक लक्षण है कि जो प्रचुर मात्रा में मिलती है उसको कैजुअली लेते हैं हम। और कई बार गृहस्थ जो मंदिर से दूर रहते हैं उनको भगवान का दर्शन और ये प्रकार का सेवा का अवसर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता, तो उनको जब भी मिलता है तो वो पूरे भावना से उसको करते हैं। अभी वही ब्रह्मचारी रोज एक दूसरे को सर्विंग कर रहे हैं प्रसादम हॉल में, तो रोज देख रहे हैं, रोज तो खाए तो ये खिचड़ी तो ले लेना, मेरे को क्या पूछ रहा है। और वही ब्रह्मचारी जब गृहस्थ के घर में जाते हैं तो गृहस्थ, प्रभु जी आज हमको आपने अवसर दिया सर्विंग करने का, आप मत लीजिए, मेरे को देने दीजिए। अच्छा, वही हम लोग प्रसादम हॉल में बाल्टी पड़ी है, उधर उसका चम्मच पड़ा है, खा ले जाके। तो कलयुग का ये लक्षण है कि जो प्रचुर मात्रा में, अब देखिए वो वैष्णव सेवा है, कोई ब्रह्मचारी आकर प्रसादम हॉल में बैठा है उसको खिचड़ी देना वैष्णव सेवा है। लेकिन क्योंकि वैष्णव सेवा भरपूर मात्रा में मिलती रहती है मंदिर में, इसलिए उसको हम कैजुअली लेते हैं। कितनी करें वैष्णव सेवा, एक तो ये वैष्णव संतुष्टि नहीं होते सेवा से। तो ये कलयुग का लक्षण है, एनीथिंग गिवन टू अस प्रोफ्यूजली इज टेकन फॉर ग्रांटेड। अच्छा, अभी उसी घर में पति भी वैष्णव है, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो वहां पर भी वही स्टोरी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी यही स्टोरी है, वहां पर भी वही स्टोरी है, क्योंकि कलयुग सब जगह है। तो इसलिए हमको ये जो कैजुअल एटीट्यूड है इससे बाहर आना है, तब जाकर हम हर चीज को सीरियसली लेंगे। जैसे महाराज का एक लेक्चर है, पुट योर हार्ट इन सर्विस, एक बहुत सुंदर लेक्चर है। उसमें महाराज बहुत ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन व्हेन यू आर कटिंग वेजिटेबल्स द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू हु इज आल्सो कटिंग द वेजिटेबल्स नो दैट ही माइट बी अ गोपी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। मंजरी कोई भगवान के ग्वाल सखा होंगे जो अभी आलू काट रहे हैं आपके बगल में बैठ के। और कितने जन्मों के पश्चात आपको ये आलू मिला है जिसको छील कर आप काटोगे और जो राधा मदन गोपाल जी के डायरेक्ट प्लेट में जाएगा, तो आलू का क्या सौभाग्य और जो उस आलू को काट रहा है उसका क्या सौभाग्य। कितनी बार सुबह सब्जी कटिंग होती है तो हम तो केवल यही देखते हैं कि बास्केट कब खाली होगा, तो खाली नहीं, इतना भरा हुआ है। परंतु महाराज उस लेक्चर में बोल रहे थे कि एक एक सब्जी उसके अंदर क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए जब हम काट रहे हैं। एक एक भक्त जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, क्या कॉन्शियसनेस में उन भक्तों को हमें देखना चाहिए कि हो सकता है ये भगवान द्वारा भेजे गए कोई गोप मेरे बगल में बैठे मुझे उठा रहे हैं लेक्चर में। तो ये जितना हम इसका श्रवण करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें हमारे जहन में बैठती जाएंगी। इसलिए जो पूरा एक्रोनिम हमने इस प्रकार से बनाया है कि मेडिकेशन प्यूरिफिकेशन लव एंड एंगेजमेंट, लास्ट में एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट नित्य रूप से या सालों साल तभी रहेगा जब ऊपर की चीजें हम सही तरीके से करें। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की,
हिज ग्रे शिक्षाष्टकम प्रभु की जय,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।